ये पहला जो सूत्र है न्याय दर्शन का प्रमाण प्रमेय वाला, उसको हमने कल बताया था कि प्रमाणादि षोडश पदार्थ के तत्व ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये इस सूत्र का मतलब है। अब आगे के ग्रंथ को हमें देखना है। नौच प्रमाणादीनाम तत्वज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावद भवति यावत एषाम उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते। ताकि ये जो बताया गया ना कि प्रमाण आदि पदार्थ का तत्व ज्ञान होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो प्रमाण आदि पदार्थों का तत्व ज्ञान जो सम्यक ज्ञान होगा, माने उचित प्रकार से जो तात्विक ज्ञान होगा, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि तीन बातें नहीं होंगी। वो तीन बातें क्या है? तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। ये उद्देश्य भी जब होता है, लक्षण भी जब होता है और परीक्षा भी जब होती है, तब जाकर के किसी भी तत्व का जो है ना ज्ञान होता है। तो ये जो प्रमाणादि जो 16 पदार्थ हैं, इनका भी ज्ञान तभी संभव है जब इन पदार्थों का, 16 पदार्थों का उद्देश्य किया जाएगा, लक्षण किया जाएगा और परीक्षा की जाएगी। यही बात का फिर से देखो पंक्ति में, न च प्रमाणादीनाम तत्वज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावद भवति, माने प्रमाणादि पदार्थों का तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान जो है न तावद भवति, तब तक नहीं होता है यावत एषाम, जब तक कि इनका उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते। जब तक इनका उद्देश्य न किया जाए, लक्षण न किया जाए और परीक्षा न की जाए। देखो यहाँ उद्देश्य शब्द है, उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य अलग चीज है और उद्देश्य अलग चीज है। उद्देश्य होता है पर्पस, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, किस पर्पस से आए, किस कारण से यहाँ आए हैं, तो वो वाला यहाँ नहीं। यहाँ उद्देश्य शब्द है अलग से। यह उद्देश्य क्या होता है आगे ये खुद बताएंगे ग्रंथकार। तो अभी यही है कि ये भी परीक्षा में अगर इस तरह से आ जाए कि तत्व ज्ञानम कथम भवति, तत्व ज्ञान कैसे होता है, तो लिखना यही होगा कि उद्देश्य द्वारा, लक्षण द्वारा, परीक्षा द्वारा च तत्व ज्ञानम भवति। माने उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा के द्वारा किसी भी पदार्थ का जो है तत्व ज्ञान होता है। वही यदा भाष्यकार, देखो न्याय दर्शन का सूत्रकार तो महर्षि गौतम है और भाष्यकार कौन है, तो वात्स्यायन। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि न्याय दर्शन का भाष्यकार कौन है, लिखना होगा वात्स्यायन। तो वात्स्यायन जो भाष्यकार हैं, उन्होंने लिखा है यदा यत आह भाष्यकार, यत माने जो, आह माने कहते हैं। तो जो भाष्यकार भी इस बात को कहते हैं क्या कि त्रिविधाचार्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही उद्देशो लक्षणम परीक्षा चेति। त्रिविधा, तीन प्रकार से अस्य शास्त्र से प्रवृत्ति, यह जो शास्त्र है माने न्याय दर्शन शास्त्र है, इसकी त्रिविधा प्रवृत्ति होती है, माने तीन प्रकार से प्रवृत्ति होती है। कि वह प्रकार कौन कौन है, तो उद्देशो लक्षणम परीक्षा च, माने इस शास्त्र में ये तीन ही बातें हैं, उद्देश्य है, लक्षण है और परीक्षा, ये ऐसा भाष्यकार ने भी कहा है। अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये उद्देश्य क्या होता है, लक्षण क्या होता है और परीक्षा क्या होती है। तो सबसे पहले उद्देश्य को बता रहे हैं कि उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। उद्देश्य किसे कहते हैं, तो नाम मात्रेण माने नाम केवल बता करके जहाँ पर वस्तु का संकीर्तन हो, संकीर्तन माने कथन। तो किसी भी वस्तु का नाम जहाँ जिसमें बताया जाए, तो नाम बताने को ही कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, किसी भी वस्तु के नाम को बताना जो है उसी का नाम है उद्देश्य। जैसे इन्होंने कहा तच्च अस्मिन् एव सूत्रे कृतम, जैसे उद्देश्य जो है ना इसी सूत्र में कहा गया है। किस सूत्र की बात हो रही है, ये जो प्रमाण प्रमेय संशन प्रयोजन वाला जो सूत्र है, इस सूत्र में क्या है, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा, ये तीन चीजें होती है ना, तो उसमें इन तीनों में से उद्देश्य है इस सूत्र में। क्यों? कि देखो सबका केवल नाम कहा गया, जैसे प्रमाण नाम बोला, प्रमेय नाम बोला, संशय नाम बोला, 16 पदार्थों का नाम बता दिया गया, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो जहाँ पर केवल नाम का को बताया गया हो, नाम की गणना कराई गई हो, जैसे यहाँ पर है कि 16 पदार्थ हैं, तो वो 16 पदार्थ कौन कौन हैं, तो प्रमाण प्रमेय आदि हैं, इस तरह से नाम बता दिया, तो यही किसी को कहते हैं उद्देश्य। तो उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, संकीर्तनम का फिर से समझ लो, संकीर्तनम माने कथनम अथवा प्रतिपादनम, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में कहना चाहो तो वस्तु संकीर्तनम मतलब वस्तु प्रतिपादनम, प्रतिपादनम माने कथनम, वही चीज है। तो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्र से माने विवरण नहीं, विवेचन नहीं, व्याख्यान नहीं, केवल नाम मात्र से जहाँ पर वस्तु का प्रतिपादन हो, उस प्रतिपादन को ही उद्देश्य कहते हैं। तच्च अस्मिन् एव सूत्रे कृतम, वह जो वस्तु संकीर्तन है इस सूत्र में किया गया है। अब दूसरा जो है, तीन तरह की प्रवृत्ति होती है ना, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। तो उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य का लक्षण इन्होंने बताया, उद्देश्य अस्तु नाम मात्र है ना वस्तु संकीर्तनम। अब दूसरा जो है लक्षणम, किंग नाम लक्षणम, लक्षण किसे कहते हैं, उसको बताते हैं कि लक्षणंतु असाधारण धर्म वचनम। लक्षण क्या होता है, तो असाधारण धर्म का जो वचनम माने कथनम, वही प्रतिपादनम, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, वचनम, कथनम, प्रतिपादनम, संकीर्तनम, भाषणम, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए इन सब अलग अलग शब्दों को देख करके घबराना नहीं है। तो देखो, जैसे उसमें वस्तु संकीर्तनम बोला, यहाँ पर असाधारण धर्म वचनम बोला, लेकिन बात एक ही है। तो अच्छा, अब ये क्या है लक्षण का, क्या लक्षण इन्होंने किया, असाधारण धर्म वचनम। देखो, कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो वस्तु है ना, उसमें कोई न कोई धर्म तो रहता है। वह जो धर्म है वो दो प्रकार का होगा, एक होगा साधारण धर्म, एक होगा असाधारण धर्म। अब जैसे मैत्रेयी है, अब मैत्रेयी में भी दो प्रकार का धर्म होगा, एक साधारण धर्म होगा, एक असाधारण धर्म होगा। साधारण धर्म वह होता है जो मैत्रेयी में भी हो और मैत्रेयी से बाकी जो लोग हैं ना उनमें भी हो, तो जो एक में नहीं हो करके एक से ज़्यादा में हो उसको साधारण धर्म कहा जाता है, और जो केवल एक में उसी में हो उसको असाधारण धर्म कहा जाता है। अब जैसे देखो, गो को ले लो, तो अब गो में जो कौन सा गोत्व धर्म है, तो वो गोत्व धर्म जो है केवल गो में रहेगा, ब्राह्मणत्व धर्म केवल ब्राह्मण में रहेगा, घटत्व धर्म केवल घट में रहेगा। तो जो एक में ही रहने वाला धर्म है उसको असाधारण धर्म कहते हैं, और जो धर्म एक से अधिक में रहता हो उसको साधारण धर्म कहते हैं। अब जैसे मैंने मैत्रेयी का उदाहरण दिया था, तो मैत्रेयी में एक मनुष्यत्व धर्म है, तो मनुष्यत्व धर्म तो मैत्रेयी में भी है और बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें भी मनुष्यत्व है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उसमें भी मनुष्यत्व है। तो मनुष्यत्व जो हो गया वो हो गया साधारण धर्म, और असाधारण धर्म हो गया जो कि एक में ही रहने वाला हो। जैसे मैत्रेयी में कौन सा ऐसा धर्म है जो असाधारण है, जो उसी में है, वह है मैत्रेयी में त्वा लगा दो, मैत्रेयित्व धर्म जो है वह केवल मैत्रेयी में होगा। अभिषेक है तो अभिषेक में असाधारण धर्म क्या होगा, तो उसमें भी त्वा लगा दो, अभिषेकत्व जो होगा वह केवल अभिषेक में ही होगा। तो दो, कोई भी वस्तु हो ना, उसमें दो प्रकार का धर्म होता है, साधारण धर्म और असाधारण धर्म। इसी को अगर दूसरे शब्द में कहना चाहो तो कह सकते हो कि धर्म दो प्रकार का होता है, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। तो सामान्य धर्म को साधारण धर्म कहते हैं और विशेष धर्म को असाधारण धर्म कहते हैं। तो वह जो असाधारण धर्म है, विशेष धर्म है, उसी का नाम है लक्षण। इसलिए कहा लक्षणम तो असाधारण धर्म वचनम, असाधारण धर्म का जो कथन है उसी का नाम है लक्षण। ये तो इन्होंने ग्रंथ की भाषा में बता दिया, अब थोड़ा इसको समझिए। लक्षण होता क्या है कि जिससे आप किसी भी चीज का ज्ञान होगा, जिस बात से, उसको लक्षण कहा जाता है। अब जैसे मान लो कि तू नहीं जानता है कि गाय जो है किस कैसी होती है, वहाँ एक जगह कोई है जहाँ पर कि बहुत सारे जानवर हैं और आपको गाय कौन कौन है इस इन जानवरों में से वो समझना है, तो आप किसी को पूछेंगे कि इसमें गाय कौन है तो क्या कहेगा? अगर सामने रहेगा तब तो वो उंगली से दिखा देगा, देखो ये जो है ना ये गाय है। और जहाँ पर सामने में नहीं है और फिर उसके बारे में बताना है, जैसे मान लो मैं अभिषेक को नहीं जानता, मुझे कोई पूछ मैं किसी से पूछूंगा कि अभिषेक कौन है, तो वो मुझे बताएगा ना कि वो इतने इतनी लंबाई का है, इतनी चौड़ाई का है, ऐसा कलर है, शास्त्री फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, तर्क भाषा पढ़ता है, इस तरह से बातों को बताएगा। फिर मैं जब उसको पढ़ते हुए देखूंगा तो समझ जाऊंगा, अब ऐसे व्यक्ति को देखूंगा समझ जाऊंगा कि ये अभिषेक है। तो ये जो अभिषेक के बारे में जो बताया गया ना, जिसके द्वारा हमें अभिषेक की पहचान होती है, अभिषेक की समझ होती है ना, उसी का नाम है लक्षण। तो जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ को हम समझें, किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें हो, वह हो जाता है लक्षण। अब होता है कि नहीं, पहले जो है ना परीक्षा फॉर्म सब भरते थे ना, तो उसमें पूछता था कि आप जो है ना कोई अपने शरीर का लक्षण लिखिए जिससे कि पहचान हो सके। तो लोग उसमें लिखते थे कि नाक पर तिल का चिन्ह है, कान पर तिल का चिन्ह है, इस तरह, या ये माथे पर जो है ना कटे का चिन्ह है। तो वह जो चिन्ह जो है ना उसी का नाम है लक्षण। अब मुझे लगता है कि ये मैं दिल से समझने वाली बात बताया कि लक्षण क्या होता है, और शास्त्र की भाषा में तो कह ही दोगे कि लक्षण क्या है। तो असाधारण धर्म वचन जो है वही लक्षण है, माने असाधारण धर्म कथनम लक्षणम। असाधारण धर्म और साधारण धर्म के बारे में हमने बहुत कुछ बता दिया है, अब इसको उदाहरण के द्वारा जो है ना समझाएंगे। जैसे उद्देश्य के बारे में बता तो दिया कि उद्देश्य किसे कहते हैं, कि नाम मात्रे न वस्तु संकीर्तनम, और फिर बताया उदाहरण की यथा अस्मिन् एव सूत्रे कृतम, जैसे इसी सूत्र में नाम मात्र से जो है वस्तुओं का कथन है, पदार्थों का कथन है। इसी तरह से लक्षण क्या है, तो असाधारण धर्म कथन जो है वह लक्षण है। अब उसका उदाहरण देते हैं, यथा गोह शासनादि मत्वम। अब जैसे गो का लक्षण करना है कि गो का लक्षण क्या है, तो गो का लक्षण है शासनादि मत्वम, माने जिसमें शासनादि मत्व हो वह गो होता है। गो माने गाय, तो जिसमें शासनादि मत्व हो वह गाय है। तो गाय का लक्षण क्या हो गया यहाँ पर, शासनादि मत्व। ये शासनादि मत्व क्या लक्षण क्यों हुआ, क्योंकि ये असाधारण धर्म है। गाय में दो तरह का धर्म मैंने बताया था ना, घर में दो तरह का धर्म होता है, साधारण धर्म और असाधारण धर्म। तो गाय में एक साधारण धर्म क्या है, वह है पशुत्व, क्योंकि वह पशुत्व गाय में भी है और महिष में भी है, वृषभ में भी है, बैल में भी है, हाथी में भी है, घोड़ा में भी है, तो वह साधारण धर्म है। अब लेकिन गाय में रहने वाला असाधारण धर्म कौन है, तो वह है शासनादि मत्व। ये धर्म केवल गाय में ही है, बाकी किसी अन्य पशु में जो है यह साधारण धर्म नहीं है। यह असाधारण धर्म, यह धर्म है ही नहीं, इसलिए इसको असाधारण धर्म माना जाता है। तो और इस असाधारण धर्म चूंकि है गाय का, ये इसीलिए इसको हम कहेंगे लक्षण। तो गो का लक्षण क्या है, तो गो का लक्षण है शासनादि मत्व। आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि गुरुजी तब से शासनादि मत्व कह रहे हैं, ये है क्या शासनादि मत्व? तो मैं समझ रहा हूँ, तो आप लोगों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए मैंने दो चार बार बोल रहा इसको, ताकि मन में प्रश्न उठे कि ये है क्या। तो अब देखिए इसको समझिए, ये गाय को आप लोगों ने तो जरूर देखा होगा, तो उनकी गर्दन पर गौर कर देखिए, ये जो है ना, जो गाय बहुत सारी दूध देती है ना, 10 लीटर 20 लीटर 5 लीटर, वो जो है ना असली गाय नहीं है, बल्कि वो गाय है ही नहीं, वो गाय के समान दिखने वाला कोई दूसरा पशु। वो जो देसी गाय जिसको बोलते हो ना, जो थोड़ा ही दूध 2 से 3 लीटर या बहुत अधिक तो 4 लीटर दूध देवे, जो गांव में होता है, उसको आकृति में भी छोटा होता है ना, वो असली गाय वो है, और उसी का दूध वो पौष्टिक भी होता है। गाय को जो माता कहते हो, वही सब सारी चीज़ें उस गाय के लिए हैं। यहाँ भी जो लक्षण बताया गया ना शासनादि मत्व, वो भी उसी गाय का लक्षण है। तो इसको समझो कि ये शासनादि मत्व क्या है। शासना कहते हैं कि गले में जो मांस लटकता रहता है गाय का ना, तो गले में लटकने वाला जो मांस है ना, उसी का नाम है सासना। और सासना आदि, आदि से ले लो, पूंछ ले लो, सिंग ले लो, ये सब ले लो। तो पूंछ सिंग सब तो बाकी पशु में भी होता है, लेकिन वो सासना जो है ना, वो गले में लटकने वाला जो मांस है, उस वह केवल गाय में ही होता है और किसी अन्य जानवर में नहीं होता। इसलिए असाधारण धर्म है ये, इसका इसे यह लक्षण सासनादि मत्व है। तो एक एक पहले अति शब्द का अर्थ समझ लो। सासना माने गल कम्बल, उसको गल कम्बल बोलते हैं संस्कृत में, गल कम्बलम। तो गले में लटकने वाला जो मांस है उसको सासना कहते हैं। सासना आदि, आदि से हम पूंछ ले सकते हैं, सिंग ले सकते हैं, ये सब ले। और सासनादि मत्वम, ये मत्वम जो है ना, ये हो सकता है बार बार आवे इस पुस्तक में, तो मत्वम को थोड़ा समझ। मान और मत्व, जैसे होता है श्रीमान, तो श्रीमान में एक श्री शब्द है, एक मान है। मान जो है ना, ये प्रत्यय का अंश होता है। मान प्रत्यय वहां लगाते हैं ना जहां पर युक्त, जैसे धन से युक्त है तो धनवान, श्री से युक्त है श्रीमान, ज्ञान से युक्त है ज्ञानवान। तो मान या बान, वो ये व्याकरण की प्रक्रिया बाद में बताऊंगा। तो ये मान और बान जहां लगा हो ना, उसका अर्थ होता है युक्त। तो सासना आदि मान, माने सासना आदि से युक्त, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, सासनादि मान कहेंगे। और सासनादि मान में रहने वाला जो धर्म है उसको सासनादि मत्व कहेंगे। त्व प्रत्यय संस्कृत का व्याकरण का है, वह त्व प्रत्यय का अर्थ होता है धर्म। मैं याद करूं, इससे पहले मैंने बताया था घटत्व माने घट का धर्म, पशुत्व माने पशु का धर्म, मैत्रेयीत्व बोला था माने मैत्रेयी का धर्म, अभिषेकत्व अभिषेक का धर्म। तो त्व जहां भी लगा हो ना, उसका मतलब समझना कि इसका अर्थ होता है धर्म। तो शासनादि मत्व में गौर करने पर आपको चार शब्द दिखेंगे, एक शासना, दूसरा आदि, तीसरा मान और चौथा त्व। तो शासना माने गल कम्बल, वही गले में लटकने वाला मांस कलुथरा। आदि से हम सिंह और अति पूंछ को ले सक ले लें। मान प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है युक्त, त्व भी प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है धर्म। तो शासनादि से युक्त का जो धर्म है, वह धर्म ही गो का लक्षण होता है। गो हो शासनादि मत्वम लक्षणम, माने शासना आदि से युक्त होना ही गाय का लक्षण है। होना का मतलब शासनादि से जो युक्त है उसमें रहने वाला जो धर्म है वह गाय का लक्षण है। इसी तरह से जब कभी लक्षण किया जाता है ना, किसी को भी बताया जाता है कि इसका चिन्ह क्या है, चिन्ह माने लक्षण बताया था ना पहले, तो गाय का लक्षण क्या है, तो लिखेंगे शासनादि मत्वम गोत्वम, माने गो का लक्षण है शासनादि मत्व। शासनादि मत्व मतलब शासना आदि से युक्त जो प्राणी है, उस प्राणी में रहने वाला जो धर्म है, वह धर्म कौन सा है, असाधारण धर्म। तो शासनादि युक्त जो प्राणी में रहने वाला धर्म, वही धर्म गोह लक्षणम, वही जो है गाय का लक्षण है। इस तरह से आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। आज हमने जो है ना मुख्य रूप से तीन बातें समझी हैं। एक तो न्याय दर्शन की कितने प्रकार की प्रवृत्ति है और कौन कौन है, तो त्रिविधा प्रवृत्ति, और कौन कौन है, तो प्रवृत्ति उद्देश्य नहीं उद्देश्य लक्षण और परीक्षा। फिर उद्देश्य किसे कहते हैं, तो उद्देश्य वस्तु नाम आते न वस्तु संकीर्तनम, माने जहाँ पर वस्तु का नाम बताया जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, उस वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, वस्तु का कथन जो है उपदेश है। कैसे कथन, तो नाम मात्र से, केवल नाम बताना, जैसे कि इस सूत्र में बताया गया प्रमाण प्रवेश संशय प्रयोजन में। दूसरा फिर लक्षण किसे कहते हैं, ये सीखा हमने कि दो तरह का धर्म होता है, साधारण धर्म असाधारण धर्म, तो उसमें असाधारण धर्म जो है उसको लक्षण कहते हैं। जैसे गाय का जो है लक्षण क्या है, तो शासनादि मत्व जो है गाय का लक्षण है। शासनादि मत्व को समझाया हमने, शासना माने गल कम्बल, आदि इसका मतलब हो गया पूंछ सिंह, मान माने युक्त, त्व माने धर्म, माने शासना आदि से युक्त प्राणी का जो धर्म है वह गाय का लक्षण है। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।